रोहन ने आरव को पूरी सच्चाई बता दी थी कि कैसे उसने आयु का पीछा करना शुरू किया और उसकी इमोशंस का फ़ायदा उठाकर उसने आयु को मैनिपुलेट किया। साथ ही आरव को ये भी पता चला था कि रोहन दुबई के अंडरवर्ल्ड माफिया इजाज़ खान के अंडर काम करता था और उसने आयु की इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचा दी थी। उनके हिसाब से आयु भी उन्हीं के लिए काम करती थी। जब आरव को सच का पता चला तो उसका गुस्सा काबू में नहीं रहा और उसने अपनी रिवॉल्वर को रोहन के हाथ में ज़बरदस्ती थमाकर उसे गोली मार दी। रिवॉल्वर पर आरव के बजाय रोहन के फिंगरप्रिंट थे। रोहन के मरते ही आरव ने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। वो चिल्लाकर बोला, हेल्प मी, प्लीज समबडी हेल्प मी, प्लीज जल्दी यहां कोई आओ। आरव के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के कांस्टेबल दौड़कर आए। उनमें से एक मिस्टर देशमुख के पास गया और आरव के चिल्लाने की बात कही। वो भी दौड़कर सेल तक पहुंचे। अंदर पहुंचते ही मिस्टर देशमुख और कांस्टेबल हैरान थे। आरव अपनी बाह पकड़े जमीन पर बैठा था और दूसरी तरफ रोहन की लाश पड़ी थी। रोहन के हाथ में रिवॉल्वर अभी तक थी। मिस्टर देशमुख ने रोहन की तरफ देखकर पूछा, ये सब कैसे हुआ और इसके पास रिवॉल्वर कहाँ से आई? मिस्टर खुराना, आपको चोट लगी है, आपको इसी वक्त हॉस्पिटल जाना होगा और उसके बाद आपकी स्टेटमेंट के लिए पुलिस आप तक पहुंच जाएगी। मुझे ज़्यादा नहीं लगी है, मैं साइड हट गया था, बस बुलेट छू कर निकली है। मैंने अपनी सिक्योरिटी के लिए रिवॉल्वर बाहर निकाली थी क्योंकि रोहन मुझे कुछ पता नहीं रहा था। फिर अचानक पता नहीं इसे क्या हो गया जो ये कहने लगा कि मेरी लाइफ और करियर बर्बाद हो गया। अगर इसने खुद को नहीं मारा तो ये जिसके लिए काम करता है वो इसे मार देगा। मैंने इसे रोकने की कोशिश की तो इसने मुझे गोली मारी और फिर सुसाइड कर ली। आरव ने सेल में जो भी हुआ उसकी कहानी अपने हिसाब से मिस्टर देशमुख को सुना दी थी। उसकी कहानी के हिसाब से वो किसी भी तरह से वो कल्प्रिट नहीं लग रहा था। ये सब चीज़ें आम थीं। अक्सर कोई पुलिस वाला या छोटा मोटा गुंडा किसी बड़े आदमी या माफिया के लिए काम करता था तो पकड़े जाने के बाद खुद ही सुसाइड कर लेता था या उनके आदमी जेल तक पहुंचकर उन्हें किसी न किसी तरीके से मार डालते थे। मिस्टर देशमुख को उसकी कहानी पर यकीन हो जाए इसलिए आरव ने आगे कहा, ये अंडरवर्ल्ड माफिया मिस्टर इजाज़ खान के लिए काम करता था। मुझे नहीं पता ये आदमी कौन है, पर आप इसके मोबाइल रिकॉर्ड चेक करोगे तो कोई ना कोई सबूत मिल ही जाएगा। मिस्टर देशमुख ने आरव की बात पर हामी भरी। आरव जैसे जैसे सब बता रहा था एक कांस्टेबल सारी बातें लिख रहा था। उसके बाद मिस्टर देशमुख ने कहा, आप चाहे तो मैं आपको हॉस्पिटल तक पहुंचा सकता हूं, लेकिन आपके मैनेजर मिस्टर कबीर बाहर हैं। नो, आई विल मैनेज, आरव ने जवाब दिया और अपना हाथ पकड़े हुए बाहर आया। आरव के पीछे पीछे मिस्टर देशमुख भी आ रहे थे। जब कबीर ने आरव के हाथ पर गोली लगी हुई देखी तो वो घबरा गया। आरव कबीर के इमोशंस अच्छे से समझ रहा था। वो मिस्टर देशमुख के सामने कुछ रिएक्ट करता और वो पकड़े जाते उससे पहले आरव ने कहा, उसने सुसाइड कर ली, मैंने उसे रोकने की कोशिश की पर उसने मुझ पर ही गोली चला दी। चिंता मत करो, सिर्फ टच करके गई है, वो भी थोड़ा सा, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। कबीर को वहां से हटने का इशारा करके आरव ने मिस्टर देशमुख की तरफ देखकर कहा, आई विल कोऑपरेट विद यू इन एवरी पॉसिबल वे, लेकिन हो सके मुझे इस मैटर से उतना दूर रखने की कोशिश कीजिएगा, मैं किसी माफिया वगैरह के पंगों में नहीं पड़ना चाहता। आई होप यू अंडरस्टैंड। मिस्टर देशमुख ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिलाया। फिर आरव कबीर के पास वापस आ गया। बाहर कबीर गुस्से में खड़ा आरव के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही आरव बाहर निकाला उसे देखकर कबीर गुस्से में उस पर बिफर पड़ा, क्या जरूरत थी उसे मारने की? उसने जो किया है उसकी सजा उसे हम अपने तरीके से दे देते, उसे इतनी आसान मौत नहीं देनी चाहिए थी आपको, उसके चक्कर में आपने खुद को भी चोट पहुंचा ली, अब हम पहले सीधे हॉस्पिटल चल रहे हैं। कबीर गुस्से में आरव को भले ही डांट रहा हो लेकिन उसके गुस्से में उसकी फिक्र छुपी हुई थी जिसे आरव अच्छे से समझ सकता था। आरव ने नामे सिर हिलाया और कहा, पहले मुझे घर जाना है और आयु से मिलना है, मेरी चिंता मत करो, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे किस हद तक खुद को चोट पहुंचानी है, ये एक छोटी सी ही चोट है जिसे घर पर आयु ट्रीट कर सकती हैं, मुझे इस वक्त बस उसके पास जाना है। बोलते हुए आरव की आवाज़ धीमी होने लगी और पलकें भीगने लगी, वो इमोशनल हो रहा था। कबीर ने आरव को गुस्से में तो बहुत बार देखा था लेकिन इस तरह इमोशनल होते बहुत कम मोमेंट पर देखा था। उसने धीरे से कहा, कुछ हुआ है क्या सर? आरव ने जवाब में कहा, कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है कबीर, उस रोहन चौहान ने आयु को हर तरीके से ब्लैकमेल किया, यहाँ तक कि मुझसे शादी करने के लिए जब आयु ने मना कर दिया तो उसने कुछ सिली सी वीडियो बनाकर मिस्टर जयसिंह ओबेरॉय को भेजे ताकि वो आयु को शादी के लिए फोर्स करें। वो मुझसे प्यार करने लगी थी इसलिए शायद अपने कदम पीछे लेने लगी थी, हम दोनों का रिश्ता ऐसा कभी नहीं होता जो आज रोहन की वजह से है। बोलते हुए आरव के चेहरे पर अफसोस के भाव थे। कबीर ने भी आयु को गलत समझा था, उसे भी इस बात पर दुख हो रहा था। फिर कबीर ने आगे कहा, लेकिन इतनी वजह तो काफ़ी नहीं है उसे मारने की। आरव ने हाँ में पलकें झपकाईं और कहा, हाँ सही कहा, उसने जो किया उसके बाद वो तड़प तड़प कर मरना डिजर्व करता था, लेकिन उस कमीने ने कुछ ऐसा किया जो माफ़ी लायक बिल्कुल नहीं था। बोलते हुए उसने इधर उधर देखा, वो अभी भी पुलिस स्टेशन के आगे थे और वहाँ काफ़ी रश था। आरव ने धीरे से कहा, घर चलते हैं, रास्ते में सब बता दूंगा। आरव के कहते ही कबीर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, जबकि आरव उसके पास पैसेंजर सीट पर था। कबीर ने गाड़ी सीधे खुराना मेंशन की तरफ ली। लगभग 5 मिनट के बाद आरव ने कहा, रोहन चौहान खान के लिए काम करता था, इसीलिए उसे वो मास्टर चिप चाहिए थी। वो चिप पाने के लिए उसने आयु को मोहरा बनाया। आरव ने अभी अभी जो बताया था उसे सुनकर कबीर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने आरव की तरफ देखा और फिर तुरंत अपना ध्यान ड्राइविंग पर लगा लिया। कबीर ने अंदाज़ा लगाते हुए कहा, अगर वो खान के लिए काम करता है तो ज़रूर उसने सारी इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचा दी होगी, और जैसे ही उसके मरने की खबर खान तक पहुंचेगी तो वो सबसे पहले आयु को टारगेट करेगा। वो ऐसा कैसे कर सकता है एक मासूम लड़की के साथ? आपने बिल्कुल ठीक किया, उस जैसे कमीने इंसान को उसी वक्त मार देना सही था, बोलते हुए कबीर भी काफ़ी गुस्सा हो गया था। अंडरवर्ल्ड में काम करते हुए खान के बारे में सब जानते थे, और अब इस नई मुसीबत से आयु को निकालना उनके लिए आसान नहीं रहने वाला था। ऐसे में तो बिल्कुल नहीं, जब माहिरा और लूथरा फैमिली उनसे नाराज़ हो चुकी थी। कुछ देर तक दोनों के बीच बिल्कुल चुप्पी छाई रही। फिर कबीर ने कहा, माहिरा मैम के अलावा और कोई हमारी हेल्प नहीं कर सकता। अगर आप मुसीबत में होते तो वो दौड़ी चली आती, लेकिन आपकी वाइफ को वो क्यों प्रोटेक्ट करेगी? वो ना सही कोई और करेगा, क्योंकि मेरे पास इस वक्त ट्रम्प कार्ड है, आरव ने ईविल स्माइल के साथ कहा। वो अच्छे से जानता था कि आयु को सेव करने के लिए उसे क्या करना था। कबीर भी उसकी बात का मतलब समझ गया था। अब दोनों चुपचाप खुराना मेंशन की तरफ जा रहे थे। आरव के दिमाग में यही चल रहा था कि वो आयु को कैसे फेस करेगा। अपने गुस्से के चक्कर में उसने आयु को काफी कुछ कहा और किया था। वही खुराना मेंशन में आरव के जाने के लगभग 1 घंटे बाद आयु नीचे आई। उसने देखा गौरवी जी किचन में थी, उन्होंने ब्रेकफास्ट बनवा दिया था। हाउस हेल्पिंग स्टाफ ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल पर लगाने वाला ही था। आयु किचन के दरवाजे के पास खड़ी थी। गौरवी जी के पास जाने से पहले उसने बालों से अपने माक को कवर किया, हालांकि आरव ने उसे ऐसा करने से मना किया था।
वही जब गौरवी जी की नज़र आयु पर पड़ी तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अच्छा हुआ तुम उठ गई, हॉस्पिटल भी जाना है तुम्हें, जल्दी से ब्रेकफास्ट करो। और तुम्हारे मिस्टर खुराना कहाँ है? उसे बोलो जल्दी नीचे आए, वो तो उठने में लेट नहीं करता। फिर आज क्या हो गया? वो कल पूरी रात नहीं सोने की वजह से, आयु बोलते हुए रुक गई। उसने देखा गौरवी जी शरारती मुस्कुराहट लिए उसे देख रही थीं। उसके कहने का मतलब ये था कि पार्टी की वजह से उन्हें सोने में लेट हो गई थी, लेकिन गौरवी जी कुछ और ही समझ रही थीं। इससे पहले कि गौरवी जी कुछ कहती, आयु खुद ही बोल पड़ी, आप गलत समझ रही हैं दादी, ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसा है तुम ही बता दो। खैर छोड़ो, मैं आरव से पूछ लूंगी, उसे बोलो कि जल्दी नीचे आए, मुझे उसे रूम में बुलाने नहीं जाना, क्या पता मुझे रूम में कुछ ऐसा वैसा देखने को मिल जाए जो मुझे नहीं देखना चाहिए। गौरवी जी ने जवाब दिया, वो अभी भी आयु को परेशान कर रही थी। गौरवी जी बाहर की तरफ जाने लगी, आयु उनके सामने आकर खड़ी हो गई। आरव ने गौरवी जी का ध्यान भटकाने के लिए कहा था, लेकिन गौरवी जी आरव के पास ही जा रही थी। गौरवी जी के रास्ते में आने के बाद आयु ने अपने किए की सफाई देते हुए कहा, आरव आज घर पर ही रहने वाला है और मैं भी, दादी मेरी पहली रसोई की रस्म नहीं हुई है और मेरा भी कुकिंग करने का मन कर रहा है, क्यों ना साथ में कुछ बनाएं? लेकिन आज का ब्रेकफास्ट तो बन गया है, गौरवी जी ने जवाब दिया। फिर उन्होंने आयु के चेहरे की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारा इतना मन है तो हम जरूर काम करेंगे। वैसे तो गौरवी जी को भी कुकिंग करना पसंद था, लेकिन आरव के कहने पर वो सिर्फ किचन में एक तरफ बैठकर वहां काम करने वाले स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस देती थीं। गौरवी जी ने हाउस हेल्पिंग स्टाफ की तरफ देखा और कहा, घर में सबके लिए एक जैसा खाना बनता है, तुम लोग ब्रेकफास्ट कर लेना, और एक्स्ट्रा खाना हो वो थोड़ी दूर आगे जाकर बस्ती में जो बच्चे रहते हैं उन्हें जाकर दे आना। तुम लोग अपना अपना ब्रेकफास्ट ले लो, क्योंकि थोड़ी देर के लिए हमें किचन फ्री चाहिए होगा। वहां खड़ी लड़की ने उनकी बात पर हामी भरी। उसने वहां काम करने वाले सभी स्टाफ के लिए ब्रेकफास्ट सर्व किया और सबको बुलाकर उन्हें दे दिया। बचा हुआ खाना उसने पैकेट में पैक किया और बाहर ले गई। इस काम में उसे लगभग 15 से 20 मिनट का टाइम लग गया। उन सब के बाहर जाते ही आयु ने कहा, चलिए दादी शुरू करते हैं, आपको कुछ नहीं करना, आप बस मुझे ये बताते रहिएगा कि कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। आयु को वैसे तो ज्यादा कुकिंग नहीं आती थी, लेकिन पिछले दिनों साक्षी के साथ रहते हुए उसने काफी कुछ बनाना सीख लिया था। आयु ने इधर उधर देखा और फिलैप्रन निकालकर पहनने लगी। उसने फ्रिज में से वेजिटेबल निकाली और काटने को जा रही थी, तभी गौरवी जी ने कहा, ओ मास्टर शेफ, कुकिंग करने से पहले अपने बालों को तो बांध लो, कहीं गलती से भी एक छोटा सा बाल भी आ गया तो तुम्हारे मिस्टर खुराना हंगामा मचा देंगे। आयु वहां चुपचाप खड़ी थी। अगर वो अपने बाल हटाती तो गौरवी जी को वो मात दिख जाता, और थोड़ी देर पहले वो जिस चीज को लेकर उसे परेशान कर रही थी वो सही साबित हो जाता। आयु अपनी उधेड़बुन में खोई थी, तभी गौरवी जी ने वाहन ड्रॉअर में से एक रबर बैंड निकाला और आयु के बालों में डालने लगी। आयु के बाल बांधने के बाद गौरवी जी उसके सामने आई और उनकी नज़र आयु के गर्दन पर हिकी के माक पर गई, और वो उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगी, जबकि आयु एम्बेरस होकर इधर उधर देख रही थी।